जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada.
ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृपया मेरे बात दोहराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सावदैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तं स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुर्भ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुं वर्गेन या कल्पितां श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महां श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस भगवद्गीता के दूसरे सत्र में, दूसरे दिवस में। जैसा कि जब भी आप लोगों को गीता का जब पंपलेट मिला रहेगा तो उस पंपलेट में लिखा था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उसका अर्थ है कि आत्म अन्वेषण की यात्रा। उसका हिंदी अर्थ है आत्म अन्वेषण की यात्रा। देखिए, हमने बहुत सारी यात्राएं कर चुके हैं, है ना। बहुत सारी यात्राएं की है ना, बहुत सारे पिकनिक मनाए रहेंगे, कहीं ना कहीं गए रहेंगे, है कि नहीं। मतलब गए ना, नहीं गए, हाँ गए ना। बहुत सारी यात्राएं को हम करते रहते हैं, छुट्टी में, समर में, इत्यादि जगह जब भी समय मिले तो हम निकल जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो ये जितनी भी यात्राएं अब तक हमने किया है वो सब कौन सी यात्रा है, वो हमारे शरीर के एंजॉयमेंट के लिए वो यात्रा है। लेकिन आज हम ये जो 5 दिनों की यात्रा पे निकले हुए हैं, जो कि आज दूसरा दिवस है, ये कौन सी यात्रा है पता है? ये आत्मा के लिए यात्रा है। इसलिए उसका नाम हमने दिया है आत्म अन्वेषण की यात्रा। और यही में रियल यात्रा है। एक्चुअली रियल यात्रा, जिस दिन से इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं उस दिन से हमको रियल सुख की प्राप्ति होने लगता है। नहीं तो टेम्परेरी होता है, कितना भी आप घूमे होंगे, कितना भी गए रहेंगे, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुआ रहेगा, क्षणिक होता है वो। हो सकता है कि वो पिकनिक में भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रियल यात्रा नहीं है। रियल यात्रा तब होता है जब हम आत्मा के विषय में कुछ सोचते हैं, लेकिन हम ज्ञान ना होने के कारण हम केवल शरीर के विषय में सोचते हैं। तो हम इस 5 दिनों के यात्रा पे निकले हुए हैं, जिस यात्रा का नाम है आत्म अन्वेषण की यात्रा। तो हमने गत सत्र में, पिछले सत्र में हमने क्या सुना कल, किसी को कुछ याद है? जिज्ञासा के विषय में सुना हमने, यह देखा कि किस प्रकार से सारे उपनिषदों का जो सार है, वेदों का सार है, भगवद गीता है, है ना। वेदों के अनुसार अगर हम, शास्त्रों के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमको इस जन्म में तो सुख मिलता ही है, लेकिन आने वाले अगले जन्म में भी हमको सुख की प्राप्ति होता है। हमने इस प्रकार से हम कल चर्चा कर रहे थे, और साथ साथ में हमने देखा कि वेद, जो वेद है उस क्वांटिटी में कितने हैं, है ना। हमारे पास इसमें उपलब्ध जो वेद है वो कितने परसेंट बच गए हैं? मात्र 6%, 6% ही बचे हैं। लेकिन वो 6% भी इतने विशाल हैं कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको पहले वेद जो थे श्रुतियों में थे, लोग बोलते थे और सुन के याद हो जाता था, लेकिन वेद व्यास जी ने इस कलयुग के जैसे कि स्थिति को देख करके, हम कल क्या सुने, हम कल क्या सब्जी खाए हुए भी याद नहीं रहता है, है ना। परसों क्या सब्जी बना था अगर पूछ दिया जाता, याद है आपको परसों क्या घर में सब्जी बनाया था? नहीं याद है, सोचना पड़ता है, है ना। कल क्या किया सब भूल जाते हैं हम, है? तो इस स्थिति को देखकर वेदव्यास जी ने उस श्रुतियों वाला जो ज्ञान था उसको लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन लिपिबद्ध किए, लेकिन वो ज्ञान भी संस्कृत में था, इसलिए अभी लिपिबद्ध तो कर दिया, लेकिन वो भी इतना विशाल था वेद, क्योंकि वेद बहुत विशाल है। तो फिर क्या किया, भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर उस महाभारत के युद्ध स्थल में अर्जुन को ज्ञान दिया, और वो जो ज्ञान दिया वो सारे उपनिषदों, सारे वेद को सार के रूप में इस भगवद गीता में रख दिया। तो ये बहुत छोटा ग्रंथ है, लेकिन सारे उपनिषद, सारे वेदों का सार है इसके अंदर। तो इस प्रकार हमने किस प्रकार सुना कल कि इंट्रोडक्शन आप भगवद गीता के विषय में सुना हमने, है ना। भगवद गीता का परिचय क्या है, इसके विषय में मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोग को कल दी आपने। तो ये गीता जो कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये धर्म ग्रंथ है। हमने कल चर्चा किए थे ना किस प्रकार से धर्म ग्रंथ है। तो भगवद गीता में कुर्सी बैठो, इसलिए कुर्सी लगाए हुआ आराम से। तो ये धर्म ग्रंथ है, शुरू से लेके अंत तक। भगवद गीता में टोटल कितने श्लोक है? 701 श्लोक है। तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक केवल धर्म की चर्चा हुई है। भगवद गीता का आप लोग के पास प्राप्त हुआ है, भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, किसी को याद है पहला श्लोक क्या है भगवद गीता का? नहीं याद है, तो अभी गीता लेके जाइए, एटलीस्ट पहला श्लोक तो पता होना चाहिए सबको, क्योंकि हमारे ये धर्म ग्रंथ है, हमारा बेस है ना। तो भगवद गीता का पहला जो श्लोक है वह श्लोक यह है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवीता युत्सव माम का पांडवश्चैव किं कुर्वत संदेह। तो इसमें जो पहला शब्द है क्या है? धर्म। पहला शब्द है धर्म, और भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है ना, उस श्लोक को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे वर्णन है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नितिर्म तिर्म म। ध पहला वर्ड और म लास्ट। तो शुरू से लेके अंत तक टोटल धर्म की बातें कही गई है भगवद गीता में। धर्म की बात चली तो हम एक बात को आपको लोग को स्मरण कराएं, इस संसार में 3 मुख्य धर्म चल रहे हैं, 3 मुख्य धर्म की चर्चा होती है। वैसे तो अनेकों धर्म हैं, बहुत सारे लोग धर्म बना बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम मुख्य रूप से कभी झगड़े भी देखते हैं इन धर्मों के विषय में, तो मुख्यतः 3 धर्म है। वो धर्म क्या है? सबसे मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म, ये मुख्य रूप से 3 फैला हुआ है। वैसे धर्म और भी है, अनेक है, लेकिन मुख्यतः जो है ना ये 3 बहुत विकराल रूप में फैला हुआ है इस संसार में। तो ये जो मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू सनातन धर्म, इसका जो बेस है ना, बेस इनके जो जिनका आधार बोलते हैं ना, जिसके ऊपर इनका धर्म सारे चीजें टिका हुआ है, इन तीनों धर्मों का, तो इनका जो आधार है वो उनका धर्म ग्रंथ है, उनका आधार है धर्म ग्रंथ। जैसे मुस्लिम, मुस्लिम जो धर्म है उनका धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ, उनका धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ। और क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल, बाइबल। और हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? भगवद गीता, है ना। तो तीनों का आधार जो बेस है ना, उनके धर्म ग्रंथ है ना। तो हिंदू समाज का जो धर्म ग्रंथ है वो भगवद गीता, इसलिए कोर्ट में जहां पे न्याय दिया जाता है वहां पे गीता के ऊपर रक्त कसम खिलाया जाता है, क्योंकि हमारा आधार है, बेस है। अभी कुरान शरीफ, इसको किसने लिखा? जो मुस्लिम धर्म का जो ग्रंथ धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, किसने लिखा? मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर ने लिखा होगा। एक्चुअली उनका नाम था मोहम्मद, लेकिन पैगंबर नाम उनकी उपाधि दी गई, क्योंकि वो पैगाम लेकर आए, पैगाम लेकर आए, संदेश लेकर आए, इसलिए उनका नाम दिया गया, उनको उपाधि दिया गया पैगंबर की, नहीं तो उनका नाम था मोहम्मद। तो मोहम्मद ने क्या किया? कुरान शरीफ की रचना किया, वो ग्रंथ को दिया, जो कि मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है। उसी प्रकार से बाइबल, बाइबल कौन लिखा? जीसस क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने लिखा। और उसके बाद भगवद गीता कौन लिखा? स्वयं भगवान कृष्ण, देखिए फोटो, इस पे उपदेश दे रहे हैं। तो कुरान शरीफ जिसको मोहम्मद पैगंबर ने लिखा, जो कि मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है, वहां पे वो वर्णन करते हैं मोहम्मद पैगंबर कि मैं अल्लाह नहीं हूं, वर्णन है उस ग्रंथ में, आप कभी मिला पढ़ेंगे तो देखिएगा। वहां पे वो लिखते हैं कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, क्या हूं? मैं भगवान का दूत हूं, इसलिए उनको पैगंबर की उपाधि दी गई। मैं क्या हूं? अल्लाह नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, मैं क्या हूं? भगवान का दूत हूं। उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट, वो क्या लिखते हैं कि आई एम नॉट ए गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, क्या हूं? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। आप उन ग्रंथों में देख सकते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, क्या हूं? भगवान का पुत्र हूं मैं। तो मोहम्मद पैगंबर ने क्या बोला? मैं अल्लाह नहीं हूं, क्या हूं? मैं दूत हूं, पैगंबर हूं, मैं भगवान का दूत हूं। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? मैं भगवान नहीं, भगवान का पुत्र हूं। लेकिन भगवद गीता किसने लिखा? भगवान ने। और भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, स्वयं मैं भगवान हूं। तो एक गरिमा देखिए, मैं किसी धर्म का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, एक गरिमा देखिए कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म की जो धर्म ग्रंथ है ना, उसको स्वयं भगवान ने लिखा हुआ है, स्वयं भगवान ने लिखा, इस बात का ऐलान किया है कि अहम सर्वस्य प्रभु। तो इस प्रकार ये जो ग्रंथ है ना, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये बहुत बड़ी गरिमा है हमने हमारे हिंदू समाज की, कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है ना, उसको स्वयं भगवान ने कहा है, स्वयं भगवान ने लिखा हुआ है। तो ये भगवद गीता की अपार महिमा है। जैसे आप देखेंगे कि समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सा है? गंगा। वाह, कम से कम इतना तो ध्यान है। अनंत नदियों, अनंत तीर्थ में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ, महत्वपूर्ण कौन सा है? बताया गया है, गंगा को बताया गया है। क्यों क्यों गंगा को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? क्योंकि वो 14 भुवन को पवित्र करने वाली नदी है, 14 भुवनों के पवित्र करने वाली नदी है। वहां पे स्नान करने मात्र से हजारों हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाद में हम करते वो बात की बात है, नहा के पाप तो धुल जाते लेकिन वापस करने लगते हैं। लेकिन गंगा को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? गंगा का सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि वो समस्त जीवों के पाप को धोने वाली है गंगा। लेकिन कभी आपने सोचा विचार किया कि ये शक्ति कहां से आए गंगा के अंदर? आप गंगा के जल को लीजिए, किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करिए, और एक नॉर्मल पानी को लीजिए, लेबोरेटरी में टेस्ट करिए, दोनों का H2O ही आएगा, 2% है, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, दोनों को टेस्ट करिए। लेकिन फिर भी वो गंगा का जो जल है इतना पवित्र है कि वो हजारों हजारों लोगों को पवित्र करता है, 14 भुवन को पवित्र करने का ताकत रखता है। कभी आपने विचार किया कि वो ताकत उसके पास कहां से आता है? हालांकि H2O के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताकत कहां से आता है? उस समय की बात है कि जब बलि महाराज ने अपना सब कुछ सौंप दिया था भगवान को, तो उस समय भगवान मापने लगे। जब दे दिया कि माप लो अपना 3 पग पूरा, तो भगवान जब मापने लगे तो दूसरा पग है, भगवान वामन देव जब मापने लगे तो दूसरा पग में ही पूरा ब्रह्मांड को माप डाला उन्होंने। और जब दूसरा पग माप रहे थे तो बिरजा जो नदी है ऊपर, वहां पे छिद्र हो गया उनके अंगूठे से, और वहां का जो जल है भगवान के चरणों को अभिषेक करते हुए इस पृथ्वी इस धराधाम पे आई। तो गंगा जब भगवान के चरणों को स्पर्श की तो उसमें त्रिभुवन की तारने की शक्ति उसके पास आ गई। उस गंगा के पास त्रिभुवन को तारने की शक्ति आ गई। तो मुझे जस्ट आपको इतना ही कहना है कि जिस भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा इस जगह पे आई और त्रिभुवन को तारने की शक्ति रखती है, तो उस भगवान के मुख से निकली हुई ये भगवत गीता दुनिया को तारे, इसमें कौन सा संशय है कि नहीं? विचार करिए, कोई संशय नहीं है इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवद्गीता, जो कि बहुत पवित्र ग्रंथ है, जो कि भगवान के मुख से निकली हुई, भगवान का उच्चिष्ट है ये भगवद्गीता जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हमको भगवद्गीता के रूप में एक ऐसा चीज दिया है जो कि अगर हम अपने जीवन में अगर उतारे इसको तो हम सुख ही सुख को प्राप्त करेंगे। एक बार की घटना है कि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा जब कर रहे थे तो एक ब्राह्मण को मिले, तो ब्राह्मण को उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ने भगवद्गीता को उल्टा पकड़ा हुआ है और देख रहा है, केवल उल्टा पकड़ा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये भगवद्गीता को तुम उल्टा क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, तुमको पढ़ने ना आता नहीं है और उल्टा पकड़ के और रो रहा है, उसके आंखों से अश्रु धारा गिर रहा है। तो उस ब्राह्मण ने ही बोला कि प्रभु मैं तो पढ़ने तो आता नहीं मुझे, लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि ये भगवान ने कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी करुणा किया हमारे जीवों के ऊपर कि ऐसा ग्रंथ दिया है जिसको अगर हम अपने जीवन में उतारे तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कितनी बड़ी करुणा है, इस करुणा को याद करके मैं हमारे आंखों से अश्रु गिर रहा है। तो इस प्रकार ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए व्यास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना किया, ठीक है, वेद पुराण उपनिषदों के व्यास देव ने रचना किया, ये सबको मालूम है। तो व्यास देव ने जो रचना किया ना, उन सारे जितने भी महापुराण और ग्रंथों की रचना किया वेद उपनिषदों का, उसमें केवल 2 ही ग्रंथ है जिसके आगे श्रीमद् शब्द लगाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता, इस पे लिखा हुआ है 2 ही ग्रंथ के आगे श्रीमद् लगाया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, 2 ग्रंथ के आगे लिखा हुआ है। तो श्रीमद् का अर्थ क्या है? श्रीमद् मतलब ज्ञान, श्रीमद् मतलब वैराग्य, भूल गया। तो बच्चे लोग को रूम में भेज दो, टेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग का माइंड डाइवर्ट होगा। सुनो रूम सुबह सुंदर, उधर ऐसे चालू कर दो, चलो चलो उधर रूम में बैठ जाओ, उधर सब लोग मस्त से खेलो, दरवाजा बंद कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो वेदव्यास जी ने जो ग्रंथों की रचना किया उसको ठीक कर लो, जगह बराबर नहीं। तो वेदव्यास जी ने जो ग्रंथों की रचना किया, केवल 2 ग्रंथों के आगे श्रीमद् शब्द लगाया हुआ है। श्रीमद् का अर्थ मैं बता रहा था कि श्री मतलब ज्ञान, श्री मतलब वैराग्य, श्री मतलब एक लक्ष्मी, श्री मतलब धन, ये सारे श्री के कई अर्थ हैं। तो जो धन को देने वाली, श्री मतलब धन और युक्त मतलब मद मतलब युक्त, श्रीमद् श्री मतलब धन ज्ञान वैराग्य और मद मतलब युक्त संस्कृत शब्द है। मद मतलब एक धन से युक्त, वैराग्य से युक्त, ज्ञान से युक्त, ये भगवद गीता है जिसकी अपार महिमा है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। देखिए इस भगवद गीता को गीत भी कहा गया है क्योंकि भगवान से मुख से निकला हुआ है, गीता है, गीत बोलते हैं। हम संसार में अनेक गीत को सुनते रहते हैं, है ना, अनेकों गाने गाते हैं, कितने गाने आए और गए, है हमने गाए भी, कितने गाने आए और हमने गाए भी उसको, कितने 5-10 मिनट के गाना आता, कितने फिल्मी गाने आते हैं, लेकिन कितने कुछ महीनों भर तक उसको लोग बोलते हैं करते हैं, लेकिन वो बाद में दूसरा आ जाता तो दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। कोई अभी लेटेस्ट गाना चल रहा होगा तो उसमें कितना लोग गा गा के एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी पुराना गाना भी लेटेस्ट हुआ करता था लेकिन उसको नहीं याद करते हैं लोग, है ना। कितने गाने आए, कितने चले गए और हमने गाए भी उसको, है कि नहीं। इसी प्रकार से एक गीता जो है ना भगवान ने गाया हुआ है, ये 45 मिनट का गीत है जो भगवान के मुख से निकला हुआ है, 45 मिनट का गीत है। संसार के जो गीत होते हैं, संसार के गाने, वो 5-10 मिनट के होते हैं और बहुत जल्दी वो पुराने हो जाते हैं और हमारा रुचि इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता है। लेकिन एक गीता जो कि हजारों साल से चलती आ रही है, इसमें कोई भी जो पढ़ेगा उसमें आनंद की अनुभूति करेगा केवल, कभी भी उससे कंटाल नहीं आएगा, कभी भी उससे बोर नहीं होगा वो। इस प्रकार से वराह पुराण में इस गीता के बारे में कहा गया है कि यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामी सदैव ही। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि वराह पुराण के अंदर बताया गया है। कहते हैं कि यत्र गीता विचारस्य, बहुत सरल है, यत्र गीता, ये जो गीता है, विचारस्य, अगर हम विचार करते हैं कैसे इस प्रकार से बैठ के हम विचार कर रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुता, पठन करता है कोई या पाठ करता है या बैठ के संगोष्ठी में उसका विचार करता है, तो यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुता, अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो क्या होता है, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी। ये वराह पुराण का श्लोक है, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर कोई पठन करता है, पाठन करता है, विचार करता है, तो मैं वहां पे उपस्थित हो जाता हूँ, वहां पे मैं उपस्थित हो जाता हूँ। ये प्रमाण है कि यहाँ पे और कोई हो या ना हो, लेकिन भगवान उपस्थित है यहाँ पे, क्योंकि विचार चल रहा है गीता के बारे में, तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताया है। तो आइए अभी हम, ये रहा गीता के बारे में कुछ, हम तो संक्षिप्त रूप में बताया कि क्या है गीता। अभी आगे एक प्रश्न उठता है कि इस गीता को, जो कि हमने कल इंट्रोडक्शन आप भगवद गीता में हमने देखा कि कितना विशेषता गीता की है, तभी एक प्रश्न उठता है कि इस गीता को, इस गीता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। तो देखिए, गुजराती में कितने लोग यहाँ पे गुजराती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुजराती में कहावत है, झाड़ बिना पान नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं, कहावत है गुजराती में। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भौतिक संसार का ही क्यों ले लीजिए, पढ़ाई इत्यादि जो भी है, अभी जैसे कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं आप, तो उसको कुछ पुस्तक देते हैं, टेक्स्ट बुक खरीदते हैं उसके लिए और उसको स्कूल भेजते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि स्कूल क्यों भेजते हैं आप, टेक्स्ट बुक लेके घर पे पढ़ने दीजिए उसको, क्यों भेजते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत है कि नहीं। यस, गुरु की जरूरत है। इस भौतिक संसार के भी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना है तो गुरु की जरूरत पड़ती है, हम घर में बैठा के नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो टीचर है वो क्या है, गुरु का कार्य करता है और उसको सिखाता है, वो टेक्स्ट बुक में क्या है वो सारे चीजें पढ़ाता है, तभी वो एग्जाम में पास होता, नहीं तो फेल हो जाएगा है कि नहीं। तो इस संसार के एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक को, जिसका कोई महत्व नहीं है, पढ़ लिए खत्म, फिर बाद में वो एक साल के बाद पुराना हो जाता है, उसको यूज नहीं करते वापस, उसको प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, गुरु की जरूरत पड़ता है। तो क्या भगवद गीता इतनी पवित्र शुद्ध ग्रंथ, उसको प्राप्त करने की गुरु की जरूरत नहीं है, है गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से जैसे कि इस संसार में कहीं पे भी हमको जाना भी है, देखिए गुरु की जो एक स्थान है ना गुरु का, ये हर एक जगह पे है, ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही प्राप्त करने के लिए है। जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, आपके मोबाइल में मैसेज आया, किसी ने एड्रेस आपको भेजा कि इस एड्रेस पे आ जाना, किसी ने आपको भेज दिया एड्रेस, तो उस एड्रेस पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, गूगल मैप में डाल देते हैं एड्रेस को, और मैप में डाल देते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ये गूगल मैप भी क्या हुआ, गुरु हुआ, GPS, गुरु भी जी से शुरू होता है, गूगल भी जी से शुरू होता है ना। तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए भी हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आज जीपीएस, आज गूगल गुरु इत्यादि आ गए, लेकिन पहले क्या करते थे लोग, किसी पान वाले की दुकान पे पूछेंगे भाई एड्रेस बता दो, किसी दुकान वाले से या चलते राहदारी से पूछते हैं कि भाई बता दो कहाँ पे एड्रेस। हम अपना प्रयास अपनी बुद्धि से वो एड्रेस लेके कितना भी उद्यम करके आप पहुंच सकते हो उस स्थान पे, नहीं पहुंच सकते हैं। कितना भी हम सिंबल देखें, ये देखें कि नहीं यहां से जाना, अपने बुद्धि कितना भी अगर प्राप्त भी किए तो शायद सुबह निकले तो शाम को पहुंचे, बहुत मुश्किल से। लेकिन वही अगर गूगल गुरु में डाल दो या फिर वही गुरु से पूछ लो या किसी दुकान वाले से, तो तुरंत आसान हो जाता है कि नहीं। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस समय के लिए उस एड्रेस को बताने के लिए वो पान वाला या वो गूगल, वो गुरु है हमारा। तो संसार में गुरु की बहुत महत्व है। देखिए हमको बीमारी हो जाता है, बीमार पड़ते तो क्या करते हम, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप डायरेक्ट मेडिकल दुकान पे क्यों नहीं जाते हो, हजारों दवाई पड़ी वहां से लेके आओ, खाओ, ठीक हो जाओ, बाद में अंततः वहीं जाना है आपको। लेकिन पहले किधर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सही सलाह देगा। हम कोई भी दवाई उठा के खा ले तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो डॉक्टर उस समय के लिए हमारा गुरु है। क्यों, क्योंकि उस बीमारी का वो सही इलाज कर रहा है, हमको डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, और वो चीज हम लेके जा रहे हैं वो मेडिकल दुकान पे, हम दवाई खरीद के ला रहे हैं। मेडिकल दुकान में हजारों दवाइयां हैं, लेकिन उस दवाई कौन सा खाना हमको, वो डॉक्टर उस गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो बताएगा कौन सा खाना है। इसी प्रकार गीता के अंदर हरेक अनेक सिद्धांत भरे पड़े हुए हैं, इसको समझने के लिए हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो यह देखिए, अगर डॉक्टर के पास नहीं गए, डायरेक्ट जाके मेडिकल दुकान से ले लिया दवाई, तो फिर हो सकता है रिएक्शन हो, पागल भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है उसके जीवन में, पागल भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर गीता के ज्ञान को भी हम गुरु के माध्यम से नहीं सीखे, संसार के इतने सारे चीजों को मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अगर वो चीजें नहीं करते, जैसे बच्चे को अगर गुरु के माध्यम से नहीं सिखाते हैं तो सीख पाएगा कुछ नहीं पाएगा, उस एड्रेस पे गुरु के माध्यम से पहुंचते हैं। तो संसार के इतने सारे चीजें करते हम, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार इस भगवद्गीता को अगर समझना है हमको, तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम उसके बिना नहीं, दरवाजा बंद कर दो, उसके बिना हम नहीं जान सकते हैं। इसी बात को हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर गीता के ज्ञान को भी अगर गुरु के माध्यम से हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो व्यक्ति भी पागल हो जाएगा। इसको शास्त्रों में बताया गया है कि स्मृति, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाते एव कल्पते। अगर हमको इसको गुरु के माध्यम से अगर हम नहीं सीखते हैं तो इस संसार में केवल उत्पात मचाएगी, केवल संसार में वो व्यक्ति उत्पात मचाएगा। इसलिए हमको इस गीता के ज्ञान को समझना है तो हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अभी कुछ प्रमाण को मैं देता हूं। आज से 11,000 वर्ष पहले जब भगवान रामचंद्र त्रेता युग में जब प्रकट हुए थे, तो उस समय हमने देखा कि भगवान राम ने भी गुरु के पास गए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। भगवान है जिनके मुख से वेद निकले हुए है, सारे ज्ञान उनके मुख से निकले हुए है, उनको क्या जरूरत था ये सब करने की। लेकिन ये संसार के जीवों को आचरण करके सिखाए कि अगर हमको ज्ञान को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में गुरु को लाना पड़ेगा, तभी वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान स्वयं गए, भगवान कृष्ण भी गए कहां पे, गुरु के पास जाकर उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन यह संसार को दिखाने के लिए आचरण किए, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति घर में अगर पिता अच्छा आचरण कर रहा है तो बच्चा भी करेगा। लेकिन पिता ही नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, इत्यादि गलत काम कर रहा है तो बच्चा भी वही करेगा। क्योंकि पिता अगर बोलेगा भी तुम न मत करो तो बोलेगा कि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी हो सकता है कि डरवश वो नहीं बोले, लेकिन उसको चोरी छुपे वो करेगा तो करेगा। क्यों, क्योंकि पिता ही घर में जो बड़ा व्यक्ति वो खुद ही नहीं कर रहा है तो बालक कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं गुरु को ग्रहण किए, ज्ञान को प्राप्त करना, हमको बताने के लिए कि गुरु की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है। सब छोड़िए, भगवद्गीता ही पकड़िए। भगवद्गीता का प्रारंभ एक्चुअली भगवद्गीता के दूसरे अध्याय से होता है, दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक से होता है। हम भगवद्गीता में देखते हैं, थोड़ा भूमिका में जाते हैं कि किस प्रकार से जब भी महाभारत का युद्ध अभी ये बन गया कि अभी युद्ध होना ही होना है, तो उस समय अर्जुन अपने सारथी भगवान उनके सारथी बने हुए थे। अर्जुन बोलता है कि हे अच्युत, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे सामने कौन है और मैं टारगेट कर सकूं मुझे किसको पहले मारना है किसको बाद में मारना है, टारगेट सेट करना चाहता हूं। इसलिए सेनयोर उभयोर मध्य, आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेकर चलो ताकि मैं देखूं कि किसको मुझे मारना है पहले। जब भगवान उस रथ को लेकर सेनयोर उभयोर मध्य मध्य में जब खड़े कर दिए रथ को, तो अर्जुन जैसे ही देखा अपने सामने वालों को तुरंत वो मोहित हो गया। अरे बाप रे बाप, मैं किसके साथ युद्ध करने आया हूं? इसके साथ पितामह भीष्म जिनको जिनके शरण में रहकर मैंने अपना बचपन बिताया है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाया मुझे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने हमको धनुष विद्या सिखाया, मेरे गुरु है, मेरे सारे सगे संबंधी सामने खड़े हुए, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? मोहग्रस्त हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं। देखिए अर्जुन की स्थिति जो हुई ना इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, वो स्थिति हमारे भी हमारे जीवन में भी वो स्थिति, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो स्थिति है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए वही स्थिति है, ये हर एक ये स्थिति को हर एक व्यक्ति झेला हुआ है। सामने देखा और मोहग्रस्त हो गया और डर गया और अर्जुन के हाथ से गांडीव सरक गया। अब मुझे युद्ध नहीं करना, किसके साथ मैं युद्ध करने आया हूं? गांडीव सरक गया नीचे और बोला कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, मैं कटोरा लेके जीवन भर बैठ के भीख मांग के खाऊंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने उसके हाथ से हाथ कांपने लगे और युद्ध अपने आप उसका गांडी जो सरक गया अर्जुन का। देखिए ये अर्जुन तो एक मॉडल है, लेकिन ये हमारे जीवन में भी यही स्थिति है हम सबका। जैसे स्टूडेंट है, ये अनुभव सबको हुआ रहेगा, आपका एग्जाम है, एग्जाम में गए एग्जाम देने के लिए, अभी 2 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, वहां पे क्या होता है, कोई प्रश्न नहीं आता है, फिर पसीने छूटने लगते हैं और आता भी तो डर लगा रहता है, अरे मैं सही लिखूंगा कि नहीं, इस प्रकार से इतना वो डर भयभीत होने लगता है कि कभी कभी उसके हाथ से पेन सरक जाता है। ये अनुभव हुआ रहेगा सबको, भाई मेरे को तो हुआ है। तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे कितने पॉइंट आते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, ऐसे ऐसे मोड़ कि उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है। अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसा दुखद घटना घट गया जो कि मैं सोचा कभी नहीं था, ऐसी घटना घट गया और व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसे कितने। तो ये अर्जुन का स्थिति जो है ना अभी महाभारत के युद्ध में, ये हम सबकी स्थिति यही है। हमारे जीवन में भी प्रत्येक क्षण कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देता है, बहुत समस्या आ जाता है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में अपने आप को जोड़िएगा अर्जुन के साथ, ऐसी परिस्थिति में, भयानक परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अर्जुन ने क्या किया हमको वो करना चाहिए। उस समय अर्जुन ने क्या किया, ऐसे भगवान ने तो बहुत समझाया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना इत्यादि इत्यादि, बहुत भगवान ने बहुत लेक्चर दिया, बहुत लेक्चर दिया, फिर भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा अर्जुन के ऊपर, बहुत समझाया भगवान ने। लेकिन अर्जुन देखा कि अभी उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी है, बुद्धि जब काम करना बंद कर दी, हमारे जीवन में भी जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो अर्जुन ने क्या किया कि जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया, तो उस समय अर्जुन ने तुरंत क्या किया, भगवद गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में तुरंत उसने भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया, तुरंत उनके शरण में चला गया कि प्रभु कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मोहन चेता यत् श्रेयः स्याम निश्चितम् रुहितन मे शिष्यस्तेहम् साधि माम ताम प्रपन्नम्। अभी तक अर्जुन का जो भगवान के साथ रिलेशन था कौन सा था, मित्र का था, लेकिन जब ही बुद्धि काम करना बंद कर दिया तो तुरंत अर्जुन ने क्या किया, शिष्यस्तेहम् साधि माम ताम प्रपन्नम्, शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया, हाँ तुरंत भगवान को अपना गुरु बना लिया कि अभी आप बताइए मुझे क्या करना है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही हमको अपनाना चाहिए, जब हमारी बुद्धि काम करना जहां पे बंद कर दिया ना, वहां पे हमको भगवान को याद कर लेना चाहिए, गुरु को याद कर लेना चाहिए। द्रौपदी भरी सभा में जब उसको नग्न किया जा रहा था, वहां पे 40,000 कुर्सियां लगी हुई थी, उस सभा में 40,000 कुर्सी लगा हुआ था और द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, जब द्रौपदी का कोई साथ नहीं दिया तो उस समय द्रौपदी ने भगवान को याद किया और भगवान रक्षा करने के लिए आ गए। तो जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति कभी भी बनती है ना, अपने गुरु, यहाँ पे भगवान गुरु का रोल भूमिका निभाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि अर्जुन ने उनका शिष्य बन गया कि मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दिया, अभी आगे आप बताइए मुझे क्या करना है। तब जाके भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि अभी तक मित्र था तो इसलिए मित्रवत बातें बोल रहे थे, जैसे ही गुरु बने और अर्जुन शिष्य बना, तुरंत भगवान ने डांटना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पंडित वाली बातों करते, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, इन सारे लोग को तुम मारोगे, ये सारे लोग पहले मर चुके हैं, मार चुका हूं मैं, तुमको केवल माध्यम बनना है, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्षत्रिय हो युद्ध करो, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो तुम, है बड़े बड़े पंडितों वाली बातें कर रहे हो और मूर्ख कहकर डांटने लगे, क्यों, क्योंकि गुरु की भूमिका निकालने लगे। अभी गुरु, गुरु ही हमको डांट सकता है ना, टीचर डांटते हैं कि नहीं, स्कूल में डांटते हैं ना टीचर, तो गुरु की जैसे ही भूमिका निभाए तुरंत डांटना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। और इस प्रकार से डांटते हुए, लेकिन क्या होता है, हम भी गुरु के पास जाते हैं कभी कभी, ऐसी समस्या में होता है तो हम भी जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, आप कुछ ऐसा मंत्र मार दो मेरे ऊपर ताकि मेरी समस्याएं दूर हो जाए, ऐसे जाते हैं लोग, इस प्रकार का बोलते हैं। लेकिन देखिए हमको गुरु के पास जाके करना क्या है, अभी अर्जुन यहां पे बोल रहा है कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो आप बोलो, अर्जुन ये नहीं बोला कि आप युद्ध कर लो, आप ही मार लो, आप ही को कर लो, कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि मैं शांति से रहो, आप अपना कार्य कर लो, मैं मेरे को इससे दुख से मुक्त कर लो, ये नहीं बोल रहा अर्जुन। अर्जुन क्या बोल रहा है कि आप बोलिए और मैं सुनू। गुरु केवल ज्ञान देता है, बोलता है और उस शिष्य को अपने जीवन में उतारना है। देखिए टीचर सबके लिए एक सरीका रहती है, लेकिन कोई अच्छा स्टूडेंट इंटेलिजेंट बनता है और कोई मूर्ख का मूर्ख रह जाता है। टीचर वही उपदेश देती है, वही ज्ञान देती है सबके लिए, लेकिन कोई एग्जाम में फेल होता है, कोई पास होता है, किसी का मार्क कम आता है, किसी का ज्यादा आता है। मतलब वो शिष्य किस रूप में स्वीकार कर रहा है या स्टूडेंट कैसे ग्रहण कर रहा है उस ज्ञान को, उसके ऊपर है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने बोला कि मैं अभी आपका शिष्य हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है, आप बोलिए, जस्ट केवल बोलिए और मैं सुनता हूं और मैं उस प्रकार का कार्य करूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण ने मान लो पूछा कि क्या बोलना है, तो अर्जुन ने उस समय कहते कि यस श्रेयम, कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो। कभी कभी दो चीज होता है, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। श्रेयस्कर मतलब मेरे हित के लिए जो है उसको श्रेयस्कर बोलते हैं, और मेरे लिए जो अच्छा है वो बताइए। मतलब कानों को कभी कभी अच्छी लगने वाली बातें होती है, तो अर्जुन बोल रहा है कि कान प्रिय बातें मत बोलिए आप, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, मेरे लिए जो प्रिय है वो मत बोलिए, मुझे क्या अच्छा लगता वो मत बोलिए, मेरे लिए जो हित है वो बताइए आप। हम गुरु के पास जाते क्या करते हैं, हाँ मेरा अच्छा हो, मेरे प्रिय हो, वो बातें बताइए। तो गुरु भी सोचता है कि इसी उद्देश्य से आया तो वही चीजें बताता है। लेकिन अगर रियल अगर गुरु के पास जाके हम पूछेंगे कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो बात को बताइए, तब वो श्रेयस चीजों को बताता है जिसको पालन करके उसका वो सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से गीता का जो प्रारंभ हुआ भगवद्गीता का, वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब ही अर्जुन ने गुरु स्वीकार कर लिया, शिष्य बन गया, तभी तभी शुरुआत हुआ। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन एक्चुअली देखा जाए तो ये जो जीवन है ना, एक नौके की भांति है। एक नौका, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कोई समुद्र के अंदर, इस संसार को समुद्र के समान तुलना किया गया है, ये विशाल समुद्र के सागर के समान है संसार। तो अगर मान लीजिए उस सागर में कोई गिर पड़ा, किसी भी ग्रह जैसे फ्लाइट है, क्रैश हुआ और वो समुद्र के अंदर गिर गया। अभी समुद्र के अंदर गिरने के बाद वो कितना भी तैराकी, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट तैरने वाला क्यों ना हो, क्या पार पाएगा वो समुद्र से? कुछ देर तक हाथ पैर चलाएगा जितना हो सके, फिर उसके बाद डूबेगा वो, है ना? लेकिन अगर उस डूबते हुए को नौका मिल जाए, तो नौका मिल जाए तो उसको बचने की संभावना बन जाती है। नौका मिल गया तो ये मनुष्य जीवन जो शरीर है ना, ये नौके की भांति है, हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद, हमको नौका भी प्राप्त हो गया, हम उस नौके में बैठ भी गए, समुद्र के अंदर हम डूब रहे हैं, नौका आ गया किधर से, नौके में बैठ गए, लेकिन फिर भी उस समुद्र को पार नहीं पा सकते, क्योंकि वो नौके को चलाने वाला नाविक होना चाहिए। नौके को चलाने वाला नाविक होना चाहिए, नहीं तो किधर किधर भागेगा, किधर क्या होगा, घूमते ही रहेंगे, पता चला महीनों भर तक घूमते रहे, भूख प्यास से मर गए, है कि नहीं। नाविक रहे तो क्या करेगा, सही डेस्टिनेशन पर तुरंत लेके जाएगा। तो नाविक भी होना जरूरी है। तो ये शरीर हमारा नौके की बात ही है, लेकिन उस पे जो नाविक है, जो कर्णधार है, वो कौन है, गुरु है। वो हमको बताता है कि किधर कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है। जैसे वो नौका को गुरु जब चलाता है, नाविक जब चलाता है, तो उसको समुद्र के उस भयंकर परिस्थिति से उसको पार दिला देता है। तो इस प्रकार से जीवन में कभी भी समस्या आए तो हमको गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से डिस्कशन करना चाहिए। कोई भी समस्या आए, जब दशरथ को, दशरथ महाराज ने को जब टेंशन हुआ तो गुरु के पास गए। टेंशन कब हुआ, दशरथ महाराज एक बार अपने राज्य, लंबी प्रसंग है लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, दशरथ महाराज अपना राज्य कारभार में सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, अचानक उनका मुकुट जो है ना हिल गया। तो मुकुट को ठीक करने के लिए उनके जो दास दासियां इत्यादि जो कांच को लेकर आए महाराज के सामने किए, और मुकुट को सीधा कर रहे, तो उन्होंने देखा क्या कि कान के पास जो है बाल पक गया है, बाल पक गया है। अब तो दशरथ महाराज को एक बड़ी चिंता हुई कि बीत गया जीवन भजन के बिना, अभी मुझे तुरंत राजपाट को छोड़ना है और भजन करना है। ये इंडिकेशन है एक्चुअली भगवान के द्वारा, बाल पकना, आंखों से कम दिखना है, लेकिन बाल पकता तो लोग डाई लगा के उसको काला करते हैं, है ना। ये भगवान के द्वारा ये क्या बोलते हैं, इंडिकेशन दिया गया, भाई अभी समय आ गया है। आंखें काम करना बंद कर देती है, बाल पकने लगता है, शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है, ये सारे इंडिकेशन है। तो ये सारे इंडिकेशन है कि अभी समझ जाओ। तो दशरथ महाराज जैसे ही देखे बाल पकड़ा, तुरंत वो अपने गुरु के पास गए, मुझे बताइए बहुत बहुत बड़ा कष्ट हुआ, मेरा जीवन बीत गया, मैंने भजन नहीं किया। तो तुरंत उनके गुरु ने क्या किया, तुरंत उनको सलाह दिया कि रावी राजा राम राम को बना दो और आप निकल जाओ भजन के लिए। तो दशरथ के जीवन में भी जब टेंशन हुआ तो गुरु के पास गए और क्या करना और पूछे, और तुरंत अपने राजपाट को त्याग दिया। हालांकि तुरंत नहीं त्यागा, एक दिन का मोहलत मांगा, और एक दिन का मोहलत देखिए, भजन करने का जब टाइम मिलता है ना तो तुरंत स्वीकार करने लगना चाहिए। एक दिन की मोहलत जो है ना दशरथ को बहुत, उनके गुरु ने बोला था अब भी तुरंत राम को बुलाओ, राज्य पे बैठाओ, आप निकल जाओ। लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं, इतना थोड़ा प्रोग्राम करना है अच्छा से, कल रखिए और अच्छी से तैयारियां करते हैं और सिंहासन में बैठाएंगे राम को, उनका अभिषेक करके। एक दिन की मोहलत, सब सबको पता है कि एक दिन की मोहलत क्या हुआ, भगवान को 14 साल उस वनवास में जाना पड़ा और दशरथ को मरना पड़ा। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे क्षण, ऐसी स्थिति क्रिएट होते हैं ना कि हमको कुछ ज्ञान प्राप्त रियल होने लगता है, उसी समय से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर यही स्थिति हो जाती है। तो जीवन में जब भी कुछ समस्या होता है तो गुरु के पास जाना चाहिए, वो समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कबीरदास जी का वो दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, आगे बोलो, है नहीं टेक्स्ट बुक में, अभी पहले था सब कुछ निकाल दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ आप लोग, हाँ आगे भले हरे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार से वास्तव में गुरु का कार्य ही है। देखिए गुरु मतलब क्या, इस शब्द को देखिए, गु शब्द से अंधकारों से, रु शब्द से निरोधक, जो अंधकार से उस व्यक्ति को प्रकाश में लेके जाता है उसका नाम है गुरु, अंधकार से प्रकाश में लेके जाता है। गु शब्द से अंधकारों से, रु शब्द से निरोधक, जो अंधकार को प्रकाश से दूर करता है, ऐसा कार्य गुरु करता है। तो इसलिए हमने अभी क्या जाना कि गुरु बनाने से हर एक काम इजी हो जाता है। ये सार रूप में समझ लीजिए कि गुरु बनाने से संसार का हर एक कार्य इजी हो जाता है, हर एक कार्य इजी हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरु की भूमिका। तो अभी एक प्रश्न आगे, एक हम प्रश्न उठाते हैं और आगे बात करते हैं कि अभी प्रश्न उठता है कि गुरु कौन, पहचाने नहीं कैसे, ये बड़ी समस्या है संसार में। अभी गीता के इस ज्ञान को हमको गुरु की आवश्यकता है, या संसार के किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो गुरु सही है कि गलत है। जैसे आप किसी ट्यूशन, किसी कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, अभी वो टीचर सही पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है, मतलब उसके बारे में जानना, तो हम क्या देखते हैं, क्या डिग्री प्राप्त हुआ है उसको, ये सारी चीजें पता करते हैं ना कि क्या सही पढ़ा रहे हैं, या तो किसी और स्टूडेंट से पूछते कैसा पढ़ाते हो, ठीक है कि पढ़ाते हैं, ये सारी इंक्वायरी करते हैं ना। तो तभी इस गीता को भी जानने के लिए जो गुरु हम धारण करते हैं, तभी प्रश्न यह है कि गुरु को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है गुरु को पहचानना। क्यों पहचानना मुश्किल कार्य हो गया? क्योंकि बोकस गुरु बहुत ज्यादा भर गए हैं, बहुत ज्यादा बोकस गुरु भर गए। आपको बहुत कम बहुत सही गुरु प्राप्त होंगे, बहुत बोकस बहुत भर गए हैं। देखिए एप्पल के शोरूम में जाएंगे, एप्पल मोबाइल के शोरूम में जाएंगे आप, तो उसको पहचानना आसान होता है, पहचान के हम ले लेते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट के इधर जाते हैं तो कंप्यूटर को पहचानना आसान हो जाता है, या फिर पुलिस वालों को देखकर पहचानना आसान हो जाता है क्योंकि वर्दी पहना हुआ है, वो आसान हो जाता है ना, है कि नहीं। और इंजीनियर को इत्यादि जो भी डिग्री प्राप्त किए हुए लोग हैं, डॉक्टर को पहचानना आसान हो जाता है क्योंकि उनकी डिग्री से पता चल जाता है कि भाई ये सही है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो गई कि गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम इन कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सही गुरु। तो सबसे पहले देखिए संसार में नकली गुरु बोकस गुरु जो है ना बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि एक साथ में बड़ा पंडाल प्रोग्राम करते हैं, हजारों हजारों लोग को मंत्र लिखा रहता है, ले लो मंत्र, हजारों हजारों लोग को दीक्षा दे देते हैं। कुछ भी करो, खाओ पियो कुछ भी करो, मजे करो, जो भी है इस मंत्र का जपते रहो और समय समय पर हमारे आश्रम में डोनेशन पहुंचाते रहना। इस प्रकार के है इतने बड़े बड़े आयोजन। वो उस पंडाल के अलावा ना उस व्यक्ति दूसरी बार कभी अपने गुरु से कभी नहीं मिला। वहां पे वो इस प्रकार को ऑर्गेनाइज करते, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करके, और वहां पे वो उनको बैठे बैठे व्यास आसन से उनको दीक्षा दे देते हैं और बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये स्वीकार कर लो, ये करते रहो, ये सब करते रहो और समय पे हमारा डोनेशन देते रहो। ये सारी चीजें बहुत सारे धारणाएं बोकस गुरुओं का चल चुकी है। आप देखिए आपको आप सबको मालूम है, सब अनेक न्यूज चैनल इत्यादि चल रहे हैं, सबको पता है कि इस प्रकार कैसी समस्या चल रही है संसार में। तो क्या है ना, गुजरात में कहावत है, वैसे तो गुजरात और राजस्थान में बहुत ज्यादा है, जब व्यक्ति का धंधा नहीं चलता है ना तो वो क्या करता है, वो गुरु बन जाता है। जब धंधा बिजनेस नहीं चलता है ना तो गुरु बन जाता है। क्यों? क्योंकि और विशेष करके वो गुजरात और राजस्थान का बनता है। क्यों? क्योंकि गुजरात और राजस्थान में भावुक जनता बहुत है और वहीं पे बैठता है। वो क्या करता है, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, 3 दिन तक नहीं खाएगा पिएगा और पता चलेगा फिर कोई आएगा कि अरे ये कोई तो बाबा बैठा हुआ 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर उसको अरे कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा महात्मा है, देखो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, फिर वहां पे दंडवत मारना शुरू, अरे उनको कुछ ज्ञान दीजिए, फिर इस प्रकार का बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे वो जिस पेड़ के पास बैठा रहता है ना, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है, वो बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। आपको मैं बताऊं, एक व्यक्ति ना 30 दिनों तक भी नहीं खाएगा तो मरेगा नहीं वो। लेकिन लोग फंस जाते हैं, भावुक जनता बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे जो सेमिनार दे रहा हूँ ना, आप लोग को वही बुद्धि प्रदान करने का कि आप फंसना मत किधर, वही बुद्धि देने का प्रयास करो, अपने निरीक्षण करो। जैसे आप ट्यूशन या फिर स्कूल में जाकर निरीक्षण करते हो ना, ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं स्कूल, कहीं बाप मैं इतना साल भर मेहनत क्या पता चला इसका मान्यता रद्द हो गया, मेहनत बेकार। तो इस प्रकार से अनेक गुरु, ऐसे ही एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही एक बोकस गुरु जो कि उनके पास लोग आए, एक व्यक्ति गया, बहुत क्योंकि गुरु बना लेते हैं लोग तो क्या कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्ति गया गुरु जी को, उस समय जलेबी तो बहुत बड़ा आइटम होती थी, अभी तो लोकल हो गया है, लेकिन जलेबी उस समय बहुत पहले की घटना है, बहुत बड़ी आइटम होती थी जलेबी। तो गुरु जी के लिए जलेबी लेके गया, तो गुरु जी जैसे जलेबी लेके गया, गुरु जी ने तुरंत उसको लात मारा जलेबी को, मैं भोगी नहीं हूं, मैं बड़ा तपस्वी हूं मैं। तो इस प्रकार उसको अच्छा भी लगा, मेरे गुरुजी इतना बड़ा तपस्वी, जलेबी को लात मार दिया और बहुत प्रभावित हुआ। जहां वहां पे जो जितने भी लोग बैठे हुए थे उस सभा में, सब लोग बहुत प्रभावित हुए कि कितने बड़े तपस्वी हमारे गुरुजी। लेकिन सभा खत्म हुआ, सब लोग गए, लेकिन वो जो जलेबी लेके आया हुआ था ना, वो उधर ही छुप के खड़ा हुआ था, वापी कर रहा होगा, आकड़ू था वो। उधर ही एक पेड़ के पास छिप के खड़ा हुआ था वो, और सब लोग चले गए। जब गुरुजी ने देखा सब लोग चले गए, तो जो लात मारा हुआ जलेबी था उसको उठाए और पोछ पोछ के खाने लगे। तो ये जो वापी का व्यक्ति उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, तुरंत बाहर आया जिसने जलेबी लेके आया कि गुरुजी अगर आपको खाना ही था तो लात क्यों मारा। अगर खाना एक तलाद क्यों ना, तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से लेके आया था आपके लिए। लेकिन ऐसे गुरु होते हैं जो कि लोगों को दिखाने के लिए बड़े तपस्वी, बहुत तपस्वी दिखते हैं, लेकिन होते हैं अंदर उनका लोगों को केवल धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है उनका, इस संसार में चल रहा है ऐसे। तो ऐसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे जो गुरु है ना, उनको तो एक ही कार्य करना चाहिए कि गांव में लेके जाना चाहिए और बैल को निकाल के उनसे हल जोतवाना चाहिए, उनके पीठ में बांध के, ऐसे गुरुओं को। क्योंकि समाज में बहुत लोगों को भ्रमित किए हुए ऐसे गुरु। अगर देखे, बोकस गुरु मिलने से अच्छा है कि गुरु मिले ही ना, वो जीवन अच्छा है, लेकिन बोकस गुरु मिल गए ना, वो व्यक्ति को अधोगति मिलकर चले जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है, देखिए बोकस गुरु तो संसार में बहुत है, लेकिन असली गुरु कौन, असली गुरु कौन, ये प्रश्न उठता है। तो हमारे वेद और शास्त्र इस बात को बताते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते, इसलिए फंस जाते हैं ऐसे गुरुओं में। हम जब पढ़ेंगे ना, एक ग्रंथ को मैं इसलिए दे रहा हूं सबको, किसको जब पढ़ेंगे तो हमको अच्छी बुद्धि, सही चीज, हमको ज्ञान प्राप्त होगा जिससे हम समझ सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया और सबको ये मालूम रहेगा, ये श्लोक सब लोग गाते भी रहेंगे, वसुदेवम सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबको मालूम है ना? लेकिन अभी क्लिक हुआ ना कि गुरु किसको बताया गया है, वसुदेवम सुतम देवम। वसुदेव के जो सुत है भगवान कृष्ण, देवकी परमा, देवकी देवकी के पुत्र है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस संसार में एक ही गुरु है, वह है कृष्ण। याद है, सब गाते भी है, लेकिन बस केवल चल रहा है तोते की तरह, फंस जाते हैं अलग अलग जगह पे जाके। इस संसार में केवल एक ही गुरु है, वह है कृष्ण। इस श्लोक से हमको यह बात को पता चलता है। लेकिन क्या हुआ, ऐसे जो कृष्ण, ऐसे गुरु है, उनके मुख से, भगवान के मुख से, जो कि भगवान को प्रथम गुरु बताया गया है, उनको मुख से वेद और शास्त्र निकले हुए हैं। और जब वेद और शास्त्र ये श्रुतियों में जब पहले थे, तो वेद व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, कलयुग के लोगों के लिए लिपिबद्ध किया। इसलिए वेद व्यास जी जो है हमारे दूसरे गुरु हुए। दूसरे गुरु कौन हुए, वेद व्यास जी। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन जिसका हम पूजा करते हैं, वो वेद व्यास जी की पूजा करते हैं। या फिर जिस गुरु को हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो यह सोच के करते कि ये व्यास देव का प्रतिनिधित्व है, इसलिए मैं उसकी पूजा कर रहा हूं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास देव की पूजा होता है, क्योंकि हम अपने अपने भी टीचर का करते हैं ना, टीचर डे मनाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु है, शिक्षक है। लेकिन यह स्मरण होना चाहिए कि ये व्यास देव का प्रतिनिधि है, इसलिए मैं इसको पूजा करती हूँ या पूजा करता हूँ। व्यास देव का प्रतिनिधि है, क्योंकि हमको शिक्षा दे रहा है। तो ये हमारे दूसरे गुरु हुए व्यास देव जी। लेकिन क्या हुआ, व्यास देव ने भी जिन ग्रंथों की रचना लिखी, वो पूर्ण रूप से संस्कृत में था। इसलिए समाज में संस्कृत को समझने के लिए तीसरे गुरु की आवश्यकता पड़ी। वो तीसरे गुरु जो कि अगर बोकस निकले तो सब लोग को भ्रमित करके रखते हैं, और अच्छा निकले तो सबको सही ज्ञान देते हैं। तो ये तीसरे गुरु जो है इस संसार में, जिसकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है एक्चुअली, क्योंकि हम इन संस्कृत इन सारे चीजों को अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। कोई जो कृष्ण गुरु है, परम गुरु है, लेकिन वो आपको इस गीता में से बाहर निकल के सिखाने नहीं आएंगे, तो उसके लिए तीसरे गुरु की जरूरत पड़ती है। तो अभी देखिए, अभी ये तीसरा गुरु होना कैसा चाहिए। तीसरा गुरु वही होना चाहिए कि जो अपने जीवन में इन वेद और शास्त्रों को उतारे पहले, और उसके बाद लोगों को शिक्षा दे। ये तीसरा गुरु की भूमिका है कि एक तीसरा गुरु है। देखिए, हम किसी को भी गुरु नहीं बना सकते हैं, किसी को भी गुरु नहीं बना सकते हैं। ये जो तीसरा गुरु है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, उसका उसको हम इसी तरह से पहचान सकते हैं कि वो अपने जीवन में जो बोल रहा है उसको उतार रहा है कि नहीं। जैसे कि वो गुरु, अभी मैंने बताया ना कि जलेबी को लात मार दिया, सबके सामने तो तपस्वी बन गया, लेकिन अपने जीवन में रियल में उतार रहा है कि नहीं। तो जो गुरु जो बोलता है उसको अपने जीवन में अगर उतारता है, तो वो रियल गुरु है। समस्या यही है कि केवल उपदेश देते हैं लोग, अपने जीवन में उतारते नहीं है, यही समस्या है। तो इस प्रकार से, जैसे कि मैंने बॉम्बे में कभी पहले रहा करता था, तो एक जगह से प्रोग्राम करके रात को ही निकला, एक जगह से, वहां पे भी रात को ही प्रोग्राम चलते थे ऐसा। तो एक रिक्शा में बैठा मैं मंदिर बुझाने के लिए, रिक्शा में बैठा तो मैंने बैठा था, अकेले रिक्शा में था, रात का समय था, तो मैंने क्या किया, तुरंत ही रामायण के कुछ एक दो श्लोकों को, चौपाइयों को थोड़ा सा गाया। तो जैसे ही रिक्शा वाले ने सुना ना, वो तो फिर उसका चालू हो गया, पूरा रामायण गाने लगा, एक एक करके सारे रामायण की चौपाइयों को गाते गया, गाते गया, गाते गया। और मैं जब तक मंदिर पहुंचा तब तक वो गाते रहा। और जब मैं उतरा, उसको पैसे दिया, तो उसने बोला कि महाराज कैसा लगा? मैं बोला कि बहुत अच्छा लगा यार, तुमने तो पूरा, तुमको महाराज 5 मिनट और रुको तो पूरा रामायण सुना दूं आपको। बोला क्या बात करता है यार, मैं सच में अचंभित रह गया कि इतना सब उसको याद है। तो मैंने एक चीज उसको बोला, देखो तुमने गाया तो बहुत अच्छा है, बहुत रट लिया है, लेकिन मेरा एक प्रश्न बताओ, ये एक प्रश्न है मेरा, तुमको पूरा रामायण कंटस्ट है, क्या फायदा? तुम गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, क्या जीवन में उतारा तुमने अपने? इतनी सारा कभी मुझे बताओ कि तुम इतना रट रहे हो सारे चीजें, तो इससे तुम्हारा गुटखा पान छूटा नहीं अब तक? तो देखिए, रटना बोलना कुछ और हो सकता है, लेकिन वो अंदर पाला कर रहा है कि नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण, इस चीज को देखना चाहिए। उसको याद था पूरा, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रसन्न भी हुआ, उसका ग्लोरीज भी किया मैंने, लेकिन देखिए अपने जीवन में न उतारने के कारण उसकी लत जो है नहीं गई लत। इस प्रकार जैसे कि राम कृष्ण परमहंस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, विवेकानंद के गुरु राम कृष्ण परमहंस, उनके पास एक माँ अपने बच्चों को लेके गई, क्योंकि बच्चे से बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत चॉकलेट खाता था, खाते चॉकलेट नहीं तो बहुत चॉकलेट खाता था, उसका दांत सड़ने लगे, इतने चॉकलेट खाता था वो। तो क्या हुआ, वो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस के पास लेके गई, बोले कि आप कुछ ऐसा कृपा करिए कि इसका चॉकलेट छूट जाए। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, एक हफ्ते के बाद आना वापस बच्चे को लेकर। तो एक हफ्ते के बाद वो माँ अपने बच्चे को वापस लेके गई, और उस समय रामकृष्ण परमहंस ने उस बच्चे को बोला, क्या बोला, कि आज से चॉकलेट नहीं खाने का, बस इतना ही बोला। और माँ को बोल दिया कि जाओ यहाँ पे, आज से नहीं खाएगा। माँ लेके गई, वो सच में वो बच्चा छोड़ दिया चॉकलेट। अभी माँ सोचने लगी कि मैं तो इतना दिन से मना कर रही थी, नहीं छोड़ा। तो वापस गई रामकृष्ण परमहंस के पास, कि बोले कि आपने, देखिए आपने उस समय एक ही शब्द बोला, बच्चा आज से चॉकलेट मत खाना, तो मुझे केवल, चलो ठीक है वो तो अभी बंद कर दिया, अभी 15 दिन से चॉकलेट नहीं खा रहा है, वो बंद कर दिया, आपके बोलने मात्र से बंद कर दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं उस समय 7 दिन पहले पहली बार आई थी, तो उस समय आप क्यों नहीं बोला ये शब्द, उस समय भी बोल सकते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि उस समय मैं स्वयं चॉकलेट खाता था, क्योंकि उस समय मैं खाता था, इसलिए अगर मैं बोलता तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आज मैंने 7 दिन से चॉकलेट छोड़ा, इसलिए उसको बोला, और मैंने भी त्याग कर दिया, इसलिए उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो जब तक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतारता है ना, तब तक सामने वाले के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिता कितना भी बच्चे को डांटे, वो प्रभाव नहीं पड़ सकता उसके अपने जीवन में, अपने को खुद को आचरण में, उसको आचरण से सिखाना पड़ेगा, बोल के नहीं, आचरण से हम कैसा रह रहे हैं। इसलिए परम गुरु जो है ना, घर के अंदर माँ बाप को बताया गया है, कैसे माँ बाप रहते हैं उसी से बच्चा सीखता, उसी से संस्कारी बनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माँ बाप का है, वो परम गुरु है एक्चुअली उस बच्चे के लिए। तो इस प्रकार से तो हम जब तक आचरण नहीं करते हैं, तब तक हमको ये रियल गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो अभी आचरण करने वाला जो गुरु है, हमने आज क्या सीखा कि गीता के ज्ञान को थोड़ा समराइज करते हैं, कि गीता के ज्ञान को हमको, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है फर्स्ट। इससे हमने कई सारा उदाहरण भी दिया, भौतिक संसार में कुछ भी चीजें प्राप्त करना है तो उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तभी गुरु कौन, तो हमने कुछ बुकस गुरु के बारे में सुना कि किस प्रकार का ऐसे जो कि संसार को भ्रमित किए हुए हैं, और उसके बाद कुछ फिर अच्छा गुरु कौन है उसके बारे में हमने चर्चा किया, कि किस प्रकार से वो वेद व्यास जी के प्रतिनिधि होता है और उसको अपने सारे चीजों को अपने जीवन में उतारता है। उधर अंदर तो अपने जीवन में उतारता है वो, और उसके बाद लोगों को उपदेश देता है, उपदेश देता। तो हमारे प्रथम जो गुरु है कौन है, वो कृष्ण है। उसके बाद द्वितीय गुरु जो है वो कौन है, वेद व्यास जी है। और उसके बाद तीसरे गुरु जिसको हमको जरूरत है, क्योंकि वो जो तीसरा गुरु है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता हो, क्योंकि हमको पग पग पे हमको डांटता है, हम गलत कर रहे तो डांटता है, और सही चीज कर रहे कि नहीं हमको वो बताता है, हम परम गुरु कृष्ण को मान लिए, मान लो हम गीता को पढ़ रहे हैं और कुछ गलत किया तो उसमें हाथ निकालकर थप्पड़ नहीं बजाने वाले हो। वो कार्य गुरु, ये तीसरा गुरु ही करता है, तीसरा गुरु, क्योंकि उसको हम बात कर सकते हैं, हम क्या गलत कर रहे हो हमको बताएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि तीसरा गुरु जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसी तीसरे गुरु का जो चयन है ना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है कि हमको सही रूप में चयन करना चाहिए, नहीं तो फिर हम निश्चित रूप से भयावह परिस्थिति में उसका जीवन हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है ना ये सबसे बड़ा देन है भगवान का, क्योंकि 84 लाख योनियां है, देखिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते बड़े भाग्य मानुष तन पायो, बड़े भाग्य मानुष तन, ये जो मानुष जीवन का तन मिला है ना बहुत भाग्यवश मिला है। देखिए अगर इसको हमने व्यर्थ गवा दिया, अगर सही चीज का सही ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अगर व्यर्थ गवा दिया ना, फिर से हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, और कब मनुष्य जीवन मिलेगा वो पता नहीं। हाँ, चींटी कुत्ते बिल्ली इत्यादि सब इस प्रकार के शरीर 84 लाख योनियां जो है उसमें भटकते रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन जो मिला है ना, हमने पहले दिन चर्चा किया ना इस बात का, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, ये जो चार चीजें है आहार निद्रा भय और मैथुन, ये सब मनुष्य भी करता है पशु भी करता है कि नहीं। लेकिन मनुष्य मनुष्य क्यों कहलाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को बहुत सुंदर जीवन में बदल सकता है, उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर धर्म कुछ चीज है जो कि वो कर सकता है, कुत्ता बिल्ली और जानवर नहीं कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त हुआ है जिसको हमको समझना चाहिए कि अगर इसको व्यर्थ कर दिया, अगर नहीं समझा तो निश्चित रूप से हम अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। फिर से कब ये मनुष्य जीवन मिलेगा वो भरोसा नहीं है, इसलिए सही गुरु का चयन करके हमको इस गीता और भागवत के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और ये सही गुरु को कैसे पहचाने, तो इसका भी मैं उदाहरण देता हूं कि सही गुरु को पहचानने के लिए 5 चीजें जो कि शास्त्रों में बताया गया है, इस 5 चीजों को जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी आज समय हो रहा है, तो जिस ये 5 चीजों को अगर समझ जाएंगे ना तो हम निश्चित रूप से हम सही गुरु का चयन कर लेंगे। देखिए बुद्धि हमको ही लगाना है, बुद्धि हमको ही लगाना है, नहीं बुद्धि लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम फंस जाएंगे। तो हम बुद्धि जो बुद्धि लगाता है ना, ये मनुष्य जीवन इसलिए हमको प्राप्त हुआ क्योंकि हम बुद्धि लगाए, क्योंकि यही विशेष है, धर्मो ही को अधिको विशेष हो, यही विशेषता है कि हमको इस प्रकार की बुद्धि मिली है कि सही क्या है गलत क्या है हम बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं, यही बुद्धि लगाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो हम इसलिए हमको इस सही गुरु का चयन करना चाहिए, और सही गुरु के अंदर 5 चीजें जो होती है उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। हमने कल भी प्रश्न नहीं लिया था और आज के सत्र भी नहीं लिया, तो मेरा निवेदन है कि किसी का कोई प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए आप, कल से भी आपने सुना कोई भी प्रश्न हो। देखिए मैंने ये बोला कि ये कथा नहीं है, ये क्या है, क्लास है, हम आपस में कुछ आपका प्रश्न है पूछिए, कोई भी प्रश्न, कुछ भी दुनिया का कोई भी प्रश्न हो पूछिए, उसका हम जवाब देंगे ऐसा। और बिंदास पूछिए, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं कोई मारूंगा काटूंगा नहीं, ऐसा वाला नहीं हूँ, आप लोग के बीच में ही रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मौका है, बिंदास पूछिए, मतलब बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेने का, बिना बिंदास एकदम रहने का, और इस प्रकार से आप वार्तालाप कर सकते हैं। या कभी कभी जैसे कि मैं कुछ बोलता हूँ ना, इसलिए मैं तो वैसे ज्यादा से ज्यादा प्रमाण दे रहा हूँ सभी, लेकिन कभी कभी कुछ बोलता हूँ तो आप आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, नहीं आप ऐसा कैसे बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं उसका भी शास्त्रों से सलूशन दूंगा। क्योंकि मैंने ये थीम को जो बनाया हुआ है गीता को 5 दिन में समझने के लिए, तो जहां तक हो सके कि जिसका जितना भी प्रश्न मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अगर उठता है तो बताइए, क्योंकि मैंने क्या करता हूँ प्रश्न उठा रहा हूँ कि अभी सही गुरु कौन है, ये प्रश्न उठा उठा कर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो फिर भी उसके अलावा कुछ अगर प्रश्न होता तो आप पूछ सकते हैं।
किसे
देखिए, अभी एक पहली बात है कि गुरु उसको प्राप्त हो जाता है, तभी अभी हम ये जो चर्चा करेंगे ना, जो कल 5 चीजें बताएंगे ना, उससे पता चलेगा आपको, पहली बात है कि उसको सही गुरु मिला कि नहीं मिला, उससे हम समझने का प्रयास करें। पहला थिंग वहां पे जो, क्योंकि अध्यात्म में जाने के लिए कोई उसको मिल गया, फिर वो अध्यात्म में लग गए, है ना। तो अभी वो गुरु,
हाँ, कितने लोग को ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो अध्यात्म से हटा के संसार में घुमा देते
हैं। हाँ, तो यही इस प्रकार के बोकस गुरुओं से मैं बचने का जो बता रहा हूँ अभी उपाय ना, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। देखिए, जो धन संपत्ति होता है ना, धन संपत्ति व्यक्ति के पास, देखिए धन संपत्ति कितना भी होता है, मैंने कल ये चर्चा किया था कि धन संपत्ति जो है ना अनेक अनेक प्रॉब्लम्स को लेके आता है। अगर जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति है व्यक्ति के पास तो अनेक अनेक प्रॉब्लम्स को लेके आता है। अगर मान लो घर में करोड़ों रुपए है, कितना टेंशन रहेगा, दरवाजा ठीक है कि नहीं, दूसरा दरवाजा लॉक हुआ कि नहीं, ये बराबर हुआ कि नहीं, ये सारे चीज। घर में, घर से बाहर निकलेंगे तो एक बार नहीं दो बार धक्का देके खुल तो नहीं रहा ना, कितना सारा टेंशन है होता है। तो जरूरत से जो ज्यादा धन है ना व्यक्ति को टेंशन देता ही है। इसलिए जब इस धन का उपयोग अगर व्यक्ति अगर धार्मिक कार्यों में लगाता है, वो सारे चीजों में लगाता है, तो निश्चित रूप से उसका और प्रगति होता है उसको। देखिए, धन को भी जो लगाने सही रूप में लगाना अगर समझ गया ना, तो ये धन को सही रूप में अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है ना, ये बढ़ता है, समझे ना। लक्ष्मी, ये धन को किसका अमूर्तिमान स्वरूप कहा गया है, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का उपयोग अगर आप सही रूप में किया, धर्म के रूप में किया, और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप कौन है, भगवान है। तो इस लक्ष्मी का उपयोग अगर धर्म के मूर्तिमान स्वरूप भगवान के लिए किया, तो ये क्या है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बढ़ती है उसके पास। लेकिन गलत कार्यों में लगाया तो लक्ष्मी रुष्ट होती है, उस व्यक्ति के पास से निकल जाती है। क्यों? अभी मूर्तिमान स्वरूप जो धर्म है, जो भगवान है, उनके सेवा में लगाया, मतलब लक्ष्मी के पति के सेवा में लगाया। तो पति की सेवा कोई करता है तो खुश होता है ना कोई भी, तो लक्ष्मी खुश होगी ना, पत्नी खुश होती है कि मेरे पति का सेवा कर रहा है, मेरे पति की मदद कर रहा है, जो भी है सेवा कर रहा है इत्यादि, तो खुश होती है। तो लक्ष्मी जब खुश होती है तो बढ़ता है, और बढ़ता है तो ये जो धन को हमको लगाने का स्किल्स पता होना चाहिए। यही सारे चीजें हम कृष्ण भावनामृत के माध्यम से देना चाहते हैं लोगों को। हम ये नहीं कहते हैं कि घर छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं कहते हैं कि आपका धन संपत्ति हमारे मंदिर में लाके दे दो। कभी मांगा हमने, कितने साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, कभी मांगा किसी से? नहीं ना। फिर भी मंदिर बन रहा है, मंदिर चल रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बन रहा है, ऐसा कभी मैंने मांगा कि मंदिर बन रहा है लाइए अपने धन को लगाइए? मैं एक्चुअली इस ज्ञान को देना चाहता हूँ, वो डिसीजन आपको लेना है कि हमारा धन को हमको कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए, इस धन को जरूरी नहीं कि आप मंडे मंदिरों में देकर इस्तेमाल सही जगह पे कर सकते हैं। एकमात्र एक कार्य करना है जो कि मैं आप लोगों को अंतिम समय में ये सिखा के जाऊंगा कि घर में रहते रहते भी भगवान की सेवा में कैसे उस धन को लगाया जा सकता है। केवल एकमात्र घर में केंद्र बिंदु जो है ना, वो भगवान को बना देना है। मैं नौकरी कर रहा हूं, उससे जो धन संपत्ति मिलेगा लाऊंगा, और जो मैं खाऊंगा ना पहले उधर ऑफर करूंगा, उनको खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। This is real, वो जो धन है ना उसका सही यूज हो गया। ऐसा नहीं कि आप धन को मंदिर में देंगे तभी यूज होता है उसका सही, ऐसा नहीं है। घर में केंद्र बिंदु बना लिया भगवान को ना, तो धन संपत्ति कमाइए और भगवान के साथ। कुछ भी नया कपड़ा, साड़ी खरीदा, लाके भगवान के पास अर्पण कर दो कि आज मैंने ये साड़ी खरीदा और आपको ऑफर कर रही हो, आज मैंने ये ड्रेस खरीदा आपको ऑफर कर रही हो, और ऑफर करने के बाद पहने, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? आपको ही यूज करना है। खाना बनाया, ऑफर किया, उसके बाद आपको ही खाना है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब ये ऑफर करते हैं ना, वो चीज शुद्ध बन जाता है, भगवान दृष्टिपात करते हैं उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर, क्योंकि संसार के हर एक चीज में पाप घुसा हुआ है। अगर हम ऑफर कर देते हैं तो भगवान दृष्टिपात करके उस पाप को ले लेते हैं और आपको शुद्ध चीजें प्रदान करते हैं। कुछ भी लाइए घर में, कुछ भी लाइए, चाहे कोई भी वस्तु है, उसको भगवान को ऑफर करिए कि आपके लिए लिया। ये ऑफर तब हो सकता है जब हम केंद्र बिंदु भगवान को घर में बनाएंगे। देखिए, एक और चीज बताता हूं, केंद्र बिंदु जिस दिन आप भगवान को घर में बना लिया, आपने घर की बात है, घर भी हमारा एक मंदिर है, ये शरीर भी हमारा एक मंदिर है जिसके अंदर परमात्मा निवास करते हैं, इसी प्रकार घर भी हमारा एक मंदिर है, हमको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर भी हमारा मंदिर है। तो जिस दिन हम घर के अंदर केंद्र बिंदु अगर भगवान को बना दिया ना, उस दिन झगड़ा समस्या सब खत्म हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह हो गया कि पति पत्नी और बच्चे ये सारे आपस में भिड़ रहे हैं। कितने झगड़े हो जाते हैं पति पत्नी के अंदर, घर के अंदर, क्यों होते हैं पता है? क्योंकि केंद्र बिंदु जो है ना, वो भगवान को नहीं बनाया है। वो पति बोलता है मेरा ही चलेगा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा चलेगा, पत्नी बोलते नहीं मैं ऐसा बोल नहीं तो कल खाना नहीं बनाऊंगी, इत्यादि इत्यादि इस तरह झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे। क्यों पता है? क्योंकि केंद्र बिंदु जो है ना, वो भगवान को नहीं लगा है। जब केंद्र बिंदु बना दिया भगवान को ना, उस दिन क्या होगा, फोकस उसके ऊपर चला जाएगा, हर एक व्यक्ति उसके लिए कार्य करेगा। मैं घर में झाड़ू पोछा खाना बना रही हूँ, झाड़ू पोछा मार रही हूँ, किसके लिए मार रही हूँ? क्योंकि इस घर में भगवान रहते हैं। केवल अपने विचार को बदलना है, बस यही है कृष्ण भावना में संग। हमारा जो इस्कॉन जो है ना, इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है ना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अपने कॉन्शियसनेस को केवल बदलिए, केवल कॉन्शियस को, अपनी चेतना को बदलिए, केवल इतना ही बदलना है केवल। ये जिस दिन से चेतना बदल दिया ना, उस दिन से घर में सुख शांति आ जाएगी, उस दिन से घर में सुख शांति आ जाएगी। कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक केंद्र बिंदु जो है भगवान को बना देना है। जब ही भगवान उस सेतु, लंका में जाने के लिए सेतु का बनना शुरू हुआ ना, कथा लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको स्मरण कराऊं केवल। जब ही सेतु बांधने लगे तो कौन लोग बना रहे थे? अनेक बानर इत्यादि सब लोग मदद कर रहे थे, है ना, व्यक्ति बानर इत्यादि सब, पूरी सेना, जो जितनी भी सेना थी सब लोग लगे थे उस उद्यम में। आपको पता है कि वर्णन है ऐसा रामायण में कि उस समय हर एक जीवात्मा भगवान के इस पुल निर्माण की सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि उस पार जाना और सीता का को लेकर आना है वापस, तो सब लोग सेवा कर रहे थे। और समुद्र के अंदर से मगरमच्छ भी निकलता था, मछली भी निकलता था, बड़ी बड़ी सारे चीजें, और उसके ऊपर बंदर लोग चढ़ते थे, खेलते थे। जो जीवात्मा एक दूसरे को शत्रु होते थे, जैसे कि क्या होता है, शेर जो है दूसरे का शत्रु होता है, ऐसा हर एक जीवात्मा जो है ना अलग अलग लोगों का शत्रु होता है, वो पास में नहीं देखता है ना। जैसे छोटी बिल्ली है कुत्ते को देख के भाग जाती है, ऐसा हर एक किसी न किसी से तो डरता है। लेकिन वहां पे वर्णन है कि सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन किसी का कोई भी जो द्वेष की भावना थी निकल गई थी। वो बंदर लोग भी मगर के पास, अभी बंदर मगरमच्छ तो देखता रहता है, कभी बंदर वगैरह खा जाता है तुरंत, है ना। उस तालाब के पास बंदर अगर पेड़ पे है तो मगरमच्छ बहुत धीरे से देखता रहता है, अगर वो उसको मौका मिले तो तुरंत झपट पड़ता है। लेकिन वो बंदर मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के उसकी पीठ पे नाचता था, हाँ, वो मगरमच्छ कुछ नहीं करता था। पता है क्यों? केवल एक कार्य किया था, क्योंकि वहां पे जितने लोग भी कार्य कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? भगवान के लिए कर रहे थे, इसलिए सारा द्वेष जो था ना, सारा टेंशन, वो सब कुछ निकल गया था। तो घर के अंदर एक कार्य अगर हमने कर दिया, वो मैं बताऊंगा आगे वाले दिनों में कैसे करना है, हाँ? मैं इन 5 दिनों में आपको बहुत बड़ी संपत्ति दे के जाऊंगा, आपका 1 रुपया भी नहीं लेके जाऊंगा, बहुत बड़ी संपत्ति दे के जाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ, अगर आप लोग ध्यान से सुने तो ये गारंटी देता हूं मैं कि ये चीज को मैं देके जाऊंगा, जो कि घर में करेंगे, और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, यहीं पे रह रहा हूं। अगर नहीं हुआ तो आप आके मेरे टक टक करके दरवाजा कंप्लेन भी करेगा, अगर ना खोलो तो चाबी 2-3 लोगों के पास रहता है, खोल भी सकते हैं सीधा आ जाने का, क्योंकि महाराज आपने ये बताया तो नहीं हुआ है। मैं ये सारा चीज मैं प्रमाण और ये सारे चीजें गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल भावुकता है मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये चीजें को मैं, ये स्किल्स तो देके जाऊंगा। तो आने वाले दिनों में ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, कल के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि हमको जो व्यक्ति गाइड करने वाला मिला, क्या उस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण है कि नहीं, पहले वो देखना है। तो इस गुणों को लिख लेना उसको, इसलिए मैं देखिए पेन पेपर कागज सब डायरी सब कुछ दिया हूं सबके पास, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें है ना वो हमको पता चलता है, और मत हमारा बुद्धि ऐसा कि हम 2-4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन लिखे रहेंगे ना तो उसको कभी याद आ सकता है। कभी खोल के देखेंगे आप कि हाँ ये चीजें है समस्या। देखिए हर एक जीवन की समस्याओं को मैं यहाँ समाधान करने के लिए बैठा हूँ, और वो मैं केवल बोल के समाधान कर रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। कभी आप लिखे रहेंगे तो उसको खोल के देखेंगे, ये समस्या आया था उसमें क्या करना है, तो थोड़ा मैं देख लूँ इसको, उसमें आ जाएगा वो चीज कर लेने का। कहीं आप लोग ऐसा तो सोच नहीं रहे कि चलो जाने तो लिखने की क्या जरूरत, महाराज इधर ही रहता है, इधर ही सीधा आ जाएंगे, पूछेंगे क्या समस्या है सब बता दीजिए। लेकिन फिर भी लिख लीजिए, है कभी कभी मैं 1-1 महीना बाहर भी चला जाता हूँ, समझे। गीता कोर्स के बाद तुरंत तो कुछ दिनों के बाद मैं फिर उदयपुर जा रहा हूँ माता जी के गाँव 15 दिन के लिए। तो इस प्रकार से नोट डाउन करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है। हम जीवन में अनेक कार्य कर रहे हैं, देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, जो अगर देखिए मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं तुरंत बदल जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से ये सारी चीजें चेंज कर, सब कुछ धीरे से ही शुरुआत करना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। और सब लोगों ने अपनाया हुआ है, चाहे कोई भी, अभी वो माता जी प्रसाद लेके आए ना कुछ दिन, 1-2 सालों से जुड़ी हुई है, सब कुछ अच्छा हो गया। आप सोच नहीं सकते, कभी उनका अनुभव पूछेंगे ना, सोच नहीं सकते कि उनके जीवन में कितने प्रॉब्लम थे, और सारे सब कुछ एकदम सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ नहीं करना है, उनका वही चल रहा है धंधा बिजनेस, और बढ़ गया और उनका, है? और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अभी उनके पति जो है हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन संभाल रहे हैं टेम्पल का, इतना बढ़ गया, ओवर होने लगा। केवल थोड़ी सी चीजें जानना है। ये जो पैसा है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, पैसे जिसके पीछे लोग भाग रहे ना, इसका भी मैं ऐसा स्किल्स बता दूंगा ना कि आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। ऑटोमेटिक जो चीज आप कर रहे उसी में से आएगा। ऐसा नहीं कि प्रकट, ऐसा मैं सोचना कि हाँ कहीं से कोई प्रकट हो जाएगा हमारे घर में देके जाएगा, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले ही बोला है, पैसा जो है लक्ष्मी स्वरूप है। जिस दिन हम इस्तेमाल सही करना शुरू कर दिए ना, आपका वही धंधा बिजनेस से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो आप कर रहे हो सब बढ़ जाएगा। तो हम कल उसकी थोड़ा और व्याख्या करेंगे, जो आपने पूछा है सवाल ना, तो सही गुरु कौन है, उसके अंदर क्या पांच गुण होते हैं, इसके विषय में हम कल चर्चा करें। और किसी का कुछ प्रश्न? एक प्रश्न किया था, इतना आगे चला गया। अब कुछ प्रश्न तो बताइए। है कुछ प्रश्न? कोई दुखी नहीं, सब सुखी है। तो हम समाप्त करते हैं यहीं पे आज का ये सत्र। कल वापस आइए, आज तो काफी लोग आ गए हैं, हेलो। तो कल भी सब आएंगे? कौन कौन आएंगे? इतना नहीं, इतना। तो क्या, हाँ मैं रखा था उधर, देखिए। हाँ वो सब इसमें, सब लोग ना अपना अपना नाम दे दीजिए इसमें, और उधर साइन, क्योंकि मैं ये सत्र के, देखिए सत्र खत्म होगा ना, मैं आप लोग को सर्टिफिकेट भी दूंगा। देखिए आज कल के दिन जो मिस किया उसके लिए चलो छोड़िए, अभी चार दिन जो अटेंड करेगा ना, मैं उसको एक सर्टिफिकेट दूंगा। वो सर्टिफिकेट आपके पास रखिएगा कि हमने ये अटेंड किया था, हमारे जीवन में अगर कभी नहीं चला तो वो सर्टिफिकेट लेके आइएगा मेरे पास कि आपने दिया था ये। इसलिए देख के भी जाता हूँ, उसमें पूरा सब कुछ डिटेल भी रहेगा, वो सर्टिफिकेट देके जाऊंगा आप लोगों को। तो मेरा निवेदन है कि आने वाला जो और तीन सत्र बचा हुआ है उसमें भी आप लोग पधारे, हाँ, तो मैं वो सर्टिफिकेट दूंगा अंत में, अंतिम जो पूरा अटेंडेंस लगा रहा। अभी एक दिन छोड़े, एक दिन चले, ऑप्शन छोड़ दिया हमने, फ्री कर दिया आपको जो नहीं आए, लेकिन बाकी तीन दिन और अटेंड करिए, है ना, अटेंड करेंगे। बस एक घंटे के सवाल है, हम उधर बैठ के नीचे ना, वो देखता हूँ कभी कभी रात को 12 भी बजाते हैं लोग यहाँ। हाँ तो वही, तो उस काम को भी करना सीख जाएंगे और अच्छे से, और पूरा सोसाइटी सुखी रहेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने बैठते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्किल्स को अगर समझ गए ना, तो पूरा आप लोग के माध्यम से पूरा सोसाइटी सुख हो जाएगा, है ना। केवल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ चीजें दे रहा हूँ, उसको अपनाना आप लोग को, ये आप लोग के करना है, वो स्किल आप लोग के पता है। तो इसलिए अटेंड करिए, मैं अंत में सर्टिफिकेट दूंगा, है ना। कल नहीं आए चलेगा, लेकिन अभी तीन दिन पक्का है। आप लोग को देख के उत्साह मेरा बढ़ता है ना, थोड़ा आएंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है। बच्चे लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, है ना। अब से भी यहाँ जितने लोग आ गए सब लोग सच्चे हैं, क्योंकि वो जिज्ञासा किया हुआ है, पहले दिन चर्चा किए थे ना, वो जिज्ञासा किया। ठीक है, तो कल से अभी जो आए हैं इसमें सब लोग अपना नाम लिख दीजिए, और कल जब भी आते हैं ना अटेंडेंस, वहाँ पे साइन मार दीजिएगा, और जितने लोग का साइन रहेगा उसी हिसाब से मैं सर्टिफिकेट बनाऊंगा, है ना। अंत दिन में हम देंगे, और सबका सबके साथ में हमने वो रखेंगे भी, हाँ फोटो भी खींचेंगे, और सबको कि हाँ इन लोगों ने अटेंड किया था और उनके जीवन से समस्या गया कि नहीं, और मैं कंटिन्यू गाइड करूंगा, चिंता मत करिए, यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो समाप्त करते हम, ठीक है, महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय।